नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
जो फेयर एंड रिमुनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1,130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।